पिता के पास आकर पिता को प्रणाम किया तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज तो जन्म से ही भगवत भक्त थे, तो प्रहलाद महाराज ने प्रथम बार अपने पिता को ये उनको अपने पढ़ाई के विषय बताए। हालांकि उनके जो गुरु थे संड और अमर, तो ये लोग जो है उनको उनको जो है ये राजनीतिक अर्थ अर्थशास्त्र इतनी पढ़ाते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप एक उम्मीद कर रहा था कि मेरा पुत्र इतना पढ़ा लिखा है, अगर मैं पूछो क्या बताएगा, तो प्रहलाद कहे कि ना आप ही सर्वश्रेष्ठ है, आप ही भगवान है, ये उम्मीद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज बड़े दिव्य उपदेश दिए हिरण्यकश्यप को, कह रहे थे तत्साधु मन ने सुरवर देहिना सदा समुद्नी धिय मसत ग्रहा हित्वा प्रपातं गृहमंदकूप वनं गत्वा हरि वनं गतो यद् हरिमाशयेत। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जीवन का उद्देश्य यह है कि गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन है एक अंधे कुएं के समान है, और इसमें है असुर श्रेष्ठ तत्साधु मन ने सुर बर देहिना, हे असुर श्रेष्ठ कि अच्छा यह है कि संसार को त्याग करके गृह जीवन को त्याग करके संसार को त्याग करके जीवन में परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो इस संसार को त्याग करके वन में जाके और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान हरि का नाम का आश्रय सीधा स्पष्ट प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से हिरण्यकश्यप तो भगवान का शत्रु ही था, भगवान को शत्रु अपना शत्रु मानता था कि उनके भाई का वध करने के कारण। तो जब इस प्रकार से कहा तो हिरण्यकश्यप बड़े जोर से हंसा, उसने छोटे से बच्चे के इस बात पे बड़ा हंसा, अब कुछ बोला नहीं। तो उसने संत अमर को कहा कि तुम लोग ध्यान रखो कि कोई भक्त आकर यहाँ पर अपने जो गुरुकुल में कोई आकर यहाँ मेरे बेटे को भड़काता है, यहाँ कोई भक्त आकर प्रचार करता है तो उसको मना करो। तो उस पर उन लोगों ने तो बड़ा हंस के फिर बच्चे को छोड़ दिए। तो संत अमर उस बच्चे को लेकर पूछने लगे कि बेटा, बड़े ही कुशलता से बड़े ही प्रेम से पूछे, बेटा तुम्हें बताओ कि तुमको ये सब तुमने कहाँ से सीखा है, तुमको कौन बताता है, बड़े प्रेम से पूछकर वे जानना चाह रहे थे कि इनको ऐसे बुद्धि कहाँ से आ। तो प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, तो प्रहलाद महाराज ने वहां पे सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया कि जिन भगवान की माया से सारा जगत विमोहित है, तो जिन भगवान की माया से सारा जगत विमोहित है उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो वास्तव में देखा जाए प्रहलाद संत अमर वे लोग ये सोच रहे थे कि प्रहलाद का बुद्धि बिगड़ गया है, उसका बुद्धि बिगड़ गया है, ये असुरों को साथ देता, असुर बुद्धि को ये ग्रहण नहीं करता, पता नहीं कहां से जो है हमारे जो शत्रु है भगवान विष्णु उनके जो भक्त है उन गुणों को विकसित कर रहा है। तो वे उनके बुद्धि था संत अमर का। तो वहां पे जब प्रहलाद महाराज संत अमर चाह रहे थे कि इसका बुद्धि जो है ठीक नहीं है, अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो भगवान को प्रणाम किए तो उसमें यही पता चल रहा कि भगवान की माया के द्वारा सभी लोग विमोहित हैं। एक रूप से प्रहलाद महाराज का ये कहना चाह रहे, देखो मैं ठीक ठाक हूँ लेकिन आप लोग भगवान को भूल रहे हो, भगवान की भूल कर उनके माया के प्रभाव में आप लोग आ चुके हो। तो वैसे भगवान, ऐसे मायापति भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें देखा जाता है कि जो है प्रहलाद महाराज किस प्रकार संत अमर को बता रहे हैं, भगवान के माया से वे लोग वास्तव में विमोहित थे, असुरगण। तो आगे प्रहलाद महाराज बताते कि भगवान की कृपा से ही कोई पंडित बन सकता है, और भगवान ही सभी को बुद्धि देते हैं। और एक कारण भी था कि प्रहलाद महाराज को उनके जो शिक्षक गण अध्यापक जो पढ़ाते थे वो पढ़ाई उनको पसंद नहीं था, उसमें कि राजनीति और अर्थनीति पढ़ाने अर्थशास्त्र पढ़ाने से किसी में शत्रु बुद्धि रखा जाता है, किसी में मित्र बुद्धि रखा जाता, तो ये चीज प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं था। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति पंडित बन सकता है, और वही भगवान सभी को बुद्धि देते हैं। तो भगवान ही सभी को बुद्धि देते हैं, और भगवान और जीवन का उद्देश्य यह होता है कि भगवान की भक्ति करना और सभी से मित्रता करें, भगवान की भक्ति करें, मित्रता करें। इस प्रकार सभी लोग, सभी जीव भगवान का दास है, और हमें इस जगत से वैकुंठ लोक में हम लोगों को जाना। तो जब इस प्रकार से इनका उपदेश सुने तो ये बड़ा क्रोधित हुए कि वास्तव में ये जो है ये तो हमारी शिक्षाओं के अनुसार ये बच्चा चल ही नहीं रहा, इस पता नहीं कहाँ से सब बुद्धि आता। तो ये भक्त का एक गुण था, भक्त अभी संडामर ये विचार रख रहे थे कि कोई हमारे शत्रु है कोई मित्र है, ये पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज का जो बुद्धि है वो बहुत हाईएस्ट बुद्धि था, भगवत बुद्धि था। तो इस कारण से उनको कोई शत्रु मित्र का कोई उनको कोई देख ही नहीं पा रहे थे। वे कह रहे थे कि भगवान की माया से सब कोई हर कोई विमोहित है, और मैं जो है उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो माया का ईश्वर है, और भगवान ही सभी को बुद्धि देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो भगवान के भजन में लगे हुए थे, और ये संडा अमर को ये कह रहे कि तुम लोग जैसे शत्रु मित्र का बुद्धि रखते हो, ऐसे मेरा बुद्धि नहीं है, शत्रु मित्र का मैं बुद्धि रखूं। और मैं प्रहलाद महाराज की दृष्टि में ये था कि सभी को अपने मित्र मान रहे थे, सभी को संभाव था, और वे इस संभाव में स्थित होकर सभी को देख रहे थे कि सभी जीव जो है ये भगवान की माया से विमोहित है, और इन सबको सभी लोग किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं था, और सभी लोग जो है भगवान के धाम वापस जाना यही जीवन का मुख्य कार्य है, और सभी लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये संत अमर को बता रहे थे। तो प्रहलाद महाराज जैसे जो चुंबक का गुण होता है लोहे को खींचना, उसी प्रकार मेरा बुद्धि भगवान में लग रहा है। तो तब संत अमर ने सोचा है ये तो जो है ये सच बात कह रहा है, इसका स्वाभाविक बुद्धि भगवान में लगा हुआ है। तो इस तो तब जो इन लोगों ने बड़ा रुष्ट हुए दोनों, संड और अमरक दोनों रुष्ट होकर उन्होंने बड़ा उनको डांटा। पिछले कई श्लोकों में हम देख रहे थे कि ये जो है उनको डांट रहे थे, कि जैसे कि कोई चंदन के वन में का काटने का चंदन को वन को चंदन का वृक्ष काटने वाला कुल्हाड़ी होता है, तो हम सब जो है हम सब चंदन के वन है, असुरगण हम सब चंदन के वन है और विष्णु इसके कुल्हाड़ी है, विष्णु असुरों के शत्रु है, कुल्हाड़ी के रूप में काटता है, और तुम प्रहलाद तुम जो है कुल्हाड़ी का तुम बेंट बने हुए हो, जैसे कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का होता है काटने का, तो तुम्हें बेंट बने हुए हो। तो जब इस प्रकार जब प्रहलाद को खूब सारा कई चीजों में उनको जो है डांटना शुरू किए, तो प्रहलाद महाराज वास्तव में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नारद मुनि बताते कि प्रहलाद महाराज में ऐसे उनमें सब दिव्य गुण थे, जहां तक कि जैसे भगवान के अंदर सभी दिव्य गुण विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहता है, उसी प्रकार भगवान में जैसे गुण है उसी प्रकार प्रहलाद में भी उसी प्रकार का गुण है, प्रहलाद में भी उसी भगवान की तरह भगवान जैसे गुण है, और भविष्य में भी और आज भी और भविष्य में भी लोग प्रहलाद महाराज के गुणों को गाएंगे और सुनेंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैष्णव गण, यहाँ तक कि सभी असुरों के शत्रु देवतागण भी जब उन्हें कभी उदाहरण देना होगा तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण देंगे। तो प्रहलाद महाराज परिपूर्ण रूप से भगवान के भक्ति में और शुद्ध विचारों में भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं, उनमें बता रहे कि उनमें तो ये जो गुणों का इनके विषय में बता रहे नारद मुनि कि इनका गुणों के विषय में क्या चर्चा करूं, बहुत सारे गुण हैं। यहाँ तक कि देखिए जैसे प्रहलाद महाराज के गुरु है नारद मुनि ही अपने शिष्य प्रहलाद का गुणगान कर गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रमाणिक गुरु नारद मुनि कैसे शिष्य ऐसे योग्य शिष्य बनना चाहिए हम सबको, जिससे कि जो गुरु प्रसन्न होए और गुरु भी अपने शिष्यों को जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तो वैसे गुण हम सबको विकसित करना चाहिए। प्रहलाद महाराज में कितना गुण था, हम लोग सब भगवत भक्त साधक हैं, तो हमें इन ऐसे प्रहलाद महाराज और भी जो भागवत में भक्तगण आते हैं उनसे हमें इन गुणों को सुनना चाहिए। अगर हम इन गुणों को सुनेंगे तो हमारे अंदर इच्छा जागृत होगा कि वैसे गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग दिन प्रतिदिन भक्ति में जो लगे हुए हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग में, साधन भजन में हम अपना समय का व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे पास ये गुणों का आना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, भगवत भक्तों का गुण। तो प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर सुंदर उनके अंदर दिव्य गुण थे। बता दें प्रहलाद महाराज के गुणों के विषय हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज के विषय गुणों के विषय नारद मुनि कह रहे
न उद्विग्न चित्त व्यसनेषु निस्पृह।
बता रहे कि प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त थे, उनका मन न उद्विग्न चित्त, उनके जो मन है कभी विचलित नहीं होता था। ये तो समझो प्रहलाद महाराज जन्मजात ये सब गुण था। 5 साल के बालक है, अब प्रहलाद महाराज के 5 साल के बालक है, अगर गिनती कर रहे होंगे नारद मुनि तो लगभग 3 साल के 2 साल पुराने बात तो बता रहे होंगे। कह रहे कि उनका मन सदैव शांत था, न उद्विग्न चित्त। तो इसे प्रहलाद महाराज के गुणों से हमको सीखना चाहिए, हम लोग को सीखना चाहिए कि हमें अपने मन को सदैव संयम रखना चाहिए, कि मन को कभी भी मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कि मन कभी भी हमें धोखा दे सकता है। इस साधक को चाहिए कि सदैव मन को संयम रखने का प्रयास करें। प्रहलाद महाराज में स्वाभाविक रूप से था, और हम लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए, ना उद्विग्न चित्त, क्योंकि अगर हम लोग मन को संयम नहीं करेंगे तो हमारे भक्ति में आनंद भी नहीं आएगा। उसके लिए मन को संयम रखना और शुद्ध रखना बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे हमारा अपना कार्यक्रम होता है मंदिर का, जब प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिए, यही प्रोसेस है शुद्ध होने का। इसको हम जितना गंभीरता से पालन करते रहेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होते रहेगा, और तब जाके ऐसे महान भक्तों के गुणों को हम लोग हृदय में डेवलप कर पाएंगे। अगर ऐसे गुणों को डेवलप करेंगे तभी तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे। भगवान को ऐसे व्यक्तियों का आवश्यकता है जो इन गुणों को, जो अच्छे गुणों को अपनाए, देवी गुणों को अपनाए। तो बता रहे हैं तो मन को स्थिर रखना, संयम रखना, कंट्रोल करना ये बहुत आवश्यकता है। इसको अगर हम हमेशा, अगर इसको कभी भी हमें मन को संयम रखना का अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको हमेशा ही अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो स्वाभाविक रूप से वो हमारा साथ देगा मन। जैसे हम देखते हैं कुछ दिन अगर मन को फ्रीडम छोड़ दीजिएगा, वो फिर दोबारा पता लगता है मन ज्यादा भटकने लग गया, ज्यादा अपने साधन भजन से ज्यादा वो अलग होने लग गया। तो मन को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का चित्त था, उनका जो चित्त उद्विग्न, उत्तेजित नहीं होना, और उत्तेजित हो रहा तो हम देख सकते कि इस समय हमारा मन जो है संयम में नहीं है। और व्यसनेषु निस्पृह, व्यसनेषु निस्पृह में बताया जाता कि भौतिक वासनाओं से, भौतिक वासनाओं से निस्पृह, भौतिक वासनाओं में किसी प्रकार का इच्छा नहीं होना। भौतिक वासना में जैसे देखना, खाना देखना, सुनना, स्पर्श करना, सुनना, ये जो वासना है, वासनाओं से इच्छा रहित होना चाहिए। व्यसनेषु निस्पृह, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुतः। प्रहलाद महाराज सुनते हुए और देखते हुए वो सभी गुणों से, जो प्रकृति का तीनों गुणों से, गुणों को देखते हुए भी वो अनदेखा करते थे। वो जानते थे कि ये जो जितनी वस्तु है ये सब क्षणिक है, इसका नाश होने वाला है। जितने भी इस जगत में जितने भी अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर घर होता है, जैसे मॉल है और फ्लाइट होता है, ये जितने भी वस्तुएं दुनिया में, जितने भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं हम देखते हैं सुनते हैं, वे सब वस्तुओं को जो भक्त है वे मानता है कि ये सब
क्षणिक है, ये तो नाश होने वाला है, ये मिट्टीमय है। तो ऐसे दृष्टि प्रहलाद महाराज के ऐसे दृष्टि था। और बता रहे कि दंतेन्द्रिय प्राण शरीर थी सदा, तो प्रहलाद महाराज अपने इंद्रियों को, प्राण को, शरीर को सदा ही संयम में रखते थे। तो बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें, इंद्रियां, प्राण, प्राण भी होता है ना, प्राण जैसे प्राण होता है, जैसे एक तो जैसे हम जीवन शक्ति और दूसरे जो है प्राण वायु इत्यादि, जो नौ प्रकार के वायु है, 11 प्रकार जो वायु शरीर में रहते हैं, वे सब जो है संयमित रूप से थे। तो देख सकते प्रहलाद महाराज का जो आचार विचार व्यवहार किस प्रकार से रहा होगा, जिसके द्वारा ये सब उनमें कितने संयमित था। और शरीर और धी बुद्धि भी उनका संयमित रहता था। तो इसको सदैव दंत मतलब इसको कंट्रोल में रखना, अपने अधीन में रखना, इन चीजों को एक साधक के लिए बहुत आवश्यकता है। साधक के लिए बहुत आवश्यकता है कि अपने शरीर को और बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राण को सब कंट्रोल में रखें, तभी तो भक्त माने जाएंगे। यानी कि तभी तो भक्त माने जाएंगे कि आप भक्त बने के जो मर्जी करते रहे। तो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, हमें मन को संयम करने का अभ्यास, सभी प्रकार के भौतिक वासनाओं से इच्छा रहित होने का अभ्यास, और सुनकर भी देख कर भी हम उस चीज को असत वस्तु के रूप में देखें, और शरीर मन इंद्रियों प्राण को सदैव संयम रखें। प्रशांत काम और रहिता असुर, वैसे असुर सभी प्रकार के कामनाओं से पूर्ण रूप से शांत थे, इन कामनाओं से शांत थे। तो ये प्रहलाद महाराज का कुछ गुण है। और नारद जी बता रहे कि नस्तक क्रीड़े ने को बाला जड़वत न मनस्त था। तो कह रहे कि प्रहलाद महाराज में खेल कूद करने की कोई खेलकूद करने का कोई इच्छा नहीं रहता था, वो खेलकूद नहीं करते, नस्त क्रीड़ा नहीं कर पाला, ये बालक के साथ खेलते नहीं थे। तो जड़वत मनस्त था, उनका जो मन है वो सदैव भगवान कृष्ण में लगा रहता था। जैसे जड़वत होता है, जैसे वृक्ष का जड़ होता है, वो एक जगह पड़ा हो तो पड़ा ही रहता है। जैसे कोई बरगद का वृक्ष देखिए, उसका जड़ बहुत मोटे मोटे जड़ होता है, तो जहां पे है वहां पे रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना भोजन पानी भी जमीन से मिल जाता है, वो पड़ा ही रहता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी जड़वत के समान थे, यानी कि जड़वत कोई पागल जैसे नहीं थे, मैं जड़वत इसमें प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे कि कृष्ण भावनामृत में वे जड़वत, यानी भगवान के कृष्ण भावना में वे एकदम जड़ होता है, जैसे कोई जड़ वस्तु होता है ना, जैसे कोई जैसे टेबल है जड़ है, ऐसे रखा तो रखा ही हुआ है। लेकिन प्रहलाद महाराज भी प्रहलाद महाराज ऐसे जड़ के समान ही थे, लेकिन वो अंदर से कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए थे। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि नारद जी बता रहे कि जैसे कोई मगरमच्छ किसी को ग्रस लेता है, तो वो किसी उपाय से बच नहीं पाएगा, उसी प्रकार कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को ग्रसित कर चुके थे। कृष्ण गृह गृहित आत्मा, तो कृष्ण रूपी जो ग्रह है वो प्रहलाद को ग्रस चुके थे। तो इस प्रकार वो परिपूर्ण रूप से नौ वेद जगतीश्वर, तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत में रहकर वे संसार का कोई भी उनको ज्ञान नहीं रहता था। तो भक्त को यह आवश्यकता है कि ज्यादा सांसारिक चीजों को समझने में, जानने में, उसमें रमने की रमना, उसमें समय का व्यर्थता है, समय की बर्बादी है। जितना वो श्रवण कीर्तन करे, भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करे, यही असली भक्त का गुण है, भक्ति का क्रिया है। और बता रहे कि प्रहलाद महाराज आसीन पर्यटन स्नान स्नान शयन पिबन भुवन, प्रहलाद महाराज बैठते समय, घूमते समय और खाते समय, सोते समय, पीते समय और बोलते समय तो अनुसंधनति एतानि गोविंद परिकंपित। तो उनका जो है अनुसंधनति एतानि, ये सबको खाने सोने में और खाना सोना घूमना बोलना इन चीजों में अपने समय को बर्बाद, इसमें अपना समय को बर्बाद नहीं करते थे इन चीजों को, क्योंकि उनका मन जो है गोविंद परिरंभित, जो भगवान में उनका मन आलिंगन किया हुआ था। तो जिसका कारण खाने पीने सोने का कोई उनको इसमें कोई अपने को इसे कोई चिंता नहीं करते थे। तो हम भक्तों को चाहिए कि इन चीजों को, हम इन गुणों को पढ़कर समझकर धीरे धीरे विकसित करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो समय व्यतीत हो रहा है, समय किसी का प्रतीक्षा तो करता नहीं है, और हम लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं तो हमें भी समय को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें महान भक्तों के गुणों को सुनते हुए इन गुणों को विकसित करने का अभ्यास करना चाहिए। तो हम प्रहलाद महाराज के उन दिव्य गुणों को देखेंगे। प्रहलाद महाराज दिव्य गुणों के खान थे, लेकिन यहाँ पर संत अमर जो है उनको गालियां दे रहे हैं, तरह तरह के जो है, तुम जो गुलामगार हो, एक गुरु को नाश करने वाले हो, तुम चंदन की जंगल में तुम जो है लकड़ी बने हुए हो काटने के लिए। तो इस प्रकार जो उनकी निंदा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज का कितने दिव्य गुण है। तो प्रहलाद महाराज दिव्य गुणों के खान थे, तो इन गुणों को हमें सुनकर अभ्यास करते रहना चाहिए इन गुणों को विकसित करने के लिए, अगर हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। भगवान के ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान के पार्षद होते भी ऐसे ही होते हैं, इन गुणों के खान होते हैं। तो हम भक्तों को, साधु को चाहिए कि इनको इस गुणों को देखते हुए इन गुणों को अभ्यास करना चाहिए। हमारा अभ्यास जो होता है, हमारा जो दुर्गुण है उसको कम करते रहना चाहिए। अगर हमारे घूमने करने खाने पीने में भौतिक जगत को देखते हुए उसमें आकर्षित हो जाते हैं, मन की चंचलता और विषयों के प्रति मन को हटाते हुए भगवान की भक्ति में जैसे प्रहलाद महाराज का मन लगा हुआ था गोविंद परिरंभित, वैसे ही हमारा मन भी भगवान गोविंद में लगना चाहिए, तभी हम लोग प्रहलाद महाराज का कृपा को लाभ कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, तभी हम लोग एक भक्त माने जाएंगे। भक्त मतलब एक महान भक्त, उन गुणों को देख के उन गुणों को विकसित करने का इच्छा हृदय में जागृत हो तो उन्हीं को भक्त कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो संत अमर है वे उनको ऐसे विपरीत शिक्षाएं दे रहे थे कि अर्थशास्त्र, राजनीति, ये सब उनको सिखा रहे थे। तो संत अमर, जैसे हम जानते हैं, संत अमर जो है वे शुक्राचार्य के पुत्र थे। तो शुक्राचार्य जी प्रभुपाद जी नवम स्कंध में नवम स्कंध के तात्पर्य में बताते कि शुक्राचार्य का, देखिए शुक्राचार्य कैसे व्यक्ति थे और उनके पुत्र भी वही शिक्षा देते, तो उनका सुनेंगे कि शुक्राचार्य का क्या कार्यक्रम की बता रहे प्रभुपाद जी कि शुक्र का अर्थ होता है कि वीर्य, वीर्य को परिवर्तन करने में जो दक्ष है, इन कार्यों में जो एक्सपर्ट हो, तो उसको शुक्र शुक्र कहा जाता है। तो शुक्राचार्य जी इन वीर्य को परिवर्तन करने में, इधर का उधर उधर का इधर करने में, कुछ भी करने में वो बहुत दक्ष थे, इसलिए उनको शुक्र आचार्य ये कार्य उनका था। जैसे जब शुक्राचार्य जी जानते ये असुरों के गुरु थे, असुरों के गुरु थे, एक भृगुवंशी ब्राह्मण को असुरों का साथ देने की क्या आवश्यकता था, एक कौन सा ब्राह्मण का गुण है, एक आचार्य का पद निभा है। तो ये शुक्राचार्य इस प्रकार जो है, इसलिए जैसे असुर लोग कभी कभी वो लोग उनका मृत्यु हो जाता, देवता उनको मारते थे, लेकिन उनके पास एक कला था कि वो दोबारा जीवित करके दोबारा शक्ति प्रदान करने का। जैसे बलि महाराज भी, बलि महाराज को पहले इंद्र ने मार चुका था, लेकिन इन्होंने जिला दिया, जिला के फिर विश्वजीत यज्ञ करवाया, दोबारा उनको कोई पोजीशन देने में वो साथ थे। तो प्रभुपाद आपने बताते कि बता रहे कि शुक्राचार्य वे अपने ब्राह्मण था, लेकिन वो उनको बलि मारने क्यों त्याग किया, क्योंकि वो एक खानदानी ब्राह्मण था। तो ऐसे गुरु को त्याग किया जा सकता है, जब गुरु भगवत विरोधी मार्ग दिखाने लगे, जैसे बलि महाराज को उन्होंने कहा कि भगवान को दान देने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान की भक्ति, भगवान की जब भक्ति को मार्ग ना दिखाए, इसीलिए बलि महाराज ने उनको त्याग किया, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और शुक्राचार्य जी बता रहे थे कि शुक्राचार्य जी और किस प्रकार से देखा था, जैसे एक बार उनका ही दामाद याति महाराज को तुरंत जो है उनको बूढ़ा बना दिया। तो आगे याति महाराज एक बार दिव्यानी को एक कथा बताते बकरा और बकरी का। तो उसे बताते कि जो बकरी जो है वो छोड़ के, बकरा को छोड़ के चली गई, कि बकरे का किसी और से संबंध था। तो उसे बताते कि जब बकरी गई तो वहां पर वो, तो उस बकरियों का सरदार था, और शुक्राचार्य का बकरियों का सरदार बता रहे याति महाराज कि उसने उस बकरे का अंडकोश को काट दिया। तो इस प्रकार जो है उनको बता रहे कि शुक्राचार्य मतलब है कि शुक्र का अर्थ ये होता है कि फिर बाद में याति महाराज को उन्होंने दोबारा विजयवाणी दिला दी किसी प्रकार से। तो ये टेक्निक जो है शुक्राचार्य के पास था, इसलिए वो वीर को परिवर्तन करने में बड़े दक्ष थे। तो इस कारण से उनको जो है शुक्राचार्य कहा जाता। और ऐसे शुक्राचार्य का पुत्र थे संत अमर। तो वास्तव में देखा जाए शुक्राचार्य ने तो ये किसी का अधीनता स्वीकार कर लिया, किसी गुरु को चाहिए कि वो खानदानी मामले में ना फंसे। जैसे शुक्राचार्य जी ये समझे असुरों के खानदान का ही गुरु मानने लगा का कार्य करता था खानदानी गुरु। तो जब खानदानी गुरु जो होते हैं उनको त्याग किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जी जो है इस प्रकार उनके खानदान गुरु थे। शुक्राचार्य एक बार बड़ा पश्चाताप कर रहे थे कि जब दिव्यानी उनके पास, दिव्यानी जब गई कि मुझे शर्मिष्ठा ने कुएं में ढकेल दिया है, तो वहां पे भी, यहाँ पर भी शुक्राचार्य थोड़ी देर के लिए बड़े दुखी होते हैं। वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुरोहित का कार्य कर रहा हूँ, विश्वकर्मा के पास रहकर पुरोहित पुरोहित को काम कर रहा हूँ, धिक्कार है मेरे को। तो ऐसे गुरु को त्याग किया जा सकता है जब भगवान भगवान की भक्ति से विपरीत मार्ग को दिखाने लगे। तो संत अमर भी प्रहलाद महाराज को वैसे असुर शिक्षा दे रहे थे, तो प्रहलाद महाराज उनको त्याग करना और उनको तो कोई अगर प्रहलाद त्याग कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यही इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है, और श्लोक में ही बताया जा रहा है कि जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़े ही स्पष्ट रूप से बता रहे कि हाँ कि बता रहे कि जैसे प्रहलाद तत्त्वेनं गुरु ज्ञात्वा ज्ञात केय चतुष्टयम्। तो गुरुओं ने उनको बड़ा डरा धमका के उन्हें चार प्रकार का ज्ञान सिखाए, राजनीति में कैसे बर्ताव करना चाहिए, साम दाम दंड भेद, इसकी शिक्षा देकर और देकर देतेन्द्र दर्शया मास। तो देतेन्द्र हिरण्यकश्यप के पास लेकर के उनकी माता ने उनको मात्र मुष्टम अलंकृता, तो उनके माँ ने जब मिला धुला के उनको अलंकार धारण कर चुकी थी, तब ये सन अमर दोनों इनको प्रहलाद महाराज को लेकर गए, उनको सिखाए थे क्या राजनीतिक मामलों के विषय में सिखाए थे, वो क्या शाम दाम दंड और भेद, ये चार चीज उनको सिखाए थे। तो इन्हीं शिक्षाओं को दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज में इन शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं था। प्रहलाद महाराज देखते थे कि इन शिक्षाओं में क्या 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 होता है, कि क्या रिजल्ट होता है, कि किसी को हम शत्रु मानेंगे, किसको मित्र मानेंगे, यही इसका होता है। तो इसमें कोई उनका रुचि जन्म से ही नहीं था। उनकी रुचि क्या था कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप ने जब कहा बेटा तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज बता रहे कि सब संसार को छोड़कर हमें हरि का भजन करना चाहिए, हरि का भगवान का अन्य रूप से उनका आश्रय लेना चाहिए, यही मैंने सीखा। तब जो है अब हिरण्यकश्यप आगे भड़के गए इस बात से। तो यही इस श्लोक में और इसका तात्पर्य में यही समझ आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राशि भागवतम की पिता गौर विमानंद।